आस्तिक भी फोन पर किसी से बात करता हुआ ड्राइव किए जा रहा था। तभी वो एक जगह पर आकर अपनी गाड़ी रोकता है। उसके सामने इस समय वही होटल था जहां पर अनंत इस समय प्रिशा के साथ था। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और होटल के अंदर आता है। स्टाफ को पहले ही पता चल गया था कि राजा साहब आने वाले हैं। वो सब उनके लिए एक जगह खड़े थे। अंदर आते हुए आस्तिक सबको हाथ दिखाता है और सीधे मैनेजर के पास जाते हुए कहता है, रूम नंबर 201। मैनेजर जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए आस्तिक को आगे चलने का इशारा किया। आस्तिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो लोग रूम नंबर 201 के सामने रुके थे। मैनेजर जैसे ही डोलबेल बजाने के लिए अपना हाथ उठाता है, आस्तिक उसे मना कर देता है और दरवाज़ा खोलने का इशारा करता है। मैनेजर ने डुप्लीकेट की दरवाजे पर लगाई और एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, आस्तिक अंदर चला जाता है। पर अंदर उसे सिर्फ त्रिशा नज़र आती है और बेड पर सोया हुआ एक छोटा सा बच्चा। उसे देखकर आस्तिक की आंखें छोटी हो जाती हैं, पर त्रिशा आस्तिक को देखकर जल्दी से खड़ी हो जाती है, क्योंकि त्रिशा आस्तिक को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो अपना सर हल्का सा झुकाते हुए कहती है, नमस्ते राजा साहब। आस्तिक ने त्रिशा को एक नज़र घूर कर देखा और फिर इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। वो अनंत को ढूंढ रहा था, लेकिन अनंत उसे वहां नज़र नहीं आ रहा था। अनंत को ना पाकर आस्तिक ने सख्त अंदाज में त्रिशा से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? त्रिशा के हाथों में कपकपी सी होने लगी थी। उसने डरती हुई आवाज़ में कहा, अनंत यहाँ नहीं है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गया है, मुझे आपसे कुछ बात। पर आस्तिक ने त्रिशा की पूरी बात भी नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। त्रिशा बस हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह जाती है। महल में अनंत की कार आकर पार्किंग में रुकती है। वो गाड़ी से निकलकर तेज़ कदमों से अंदर की तरफ जाता है, पर दरवाजे के पास ही उसका सामना अरुणिमा से हो जाता है। अरुणिमा को देखकर अनंत एक पल के लिए डर जाता है और हैरानी से अरुणिमा से कहता है, माँ मैं आपको। वो अनंत के गाल पर एक जोरदार तमाशा मार देती है। उसका गाल एक तरफ झुक जाता है और वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरुणिमा गुस्से में चिल्लाते हुए अनंत को देखकर कहती है, आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? जो करना था तुम कर चुके हो। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने और अब यहाँ पर मेरे सामने मासूम बनकर खड़े हो। तुमने मेरी परवरिश पर सवाल उठाया है अनंत। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें शादी नहीं करनी थी भूमि से, तो मुझसे कह देते। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती, लेकिन ये जो हरकत तुमने की है ना, ये बहुत शर्मनाक है। तुमने ना सिर्फ भूमि का दिल दुखाया है, बल्कि मेरा भी दिल दुखाया है। आज शर्म आती है मुझे तुम पर, और ये सोचकर कि तुम्हारी परवरिश मैंने की है। अरुणिमा की बातें सुनकर अनंत का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और वो रोते हुए अरुणिमा को देखकर नामे सर हिलाते हुए कहता है, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बात तो सुनिए। मेरा इरादा आप लोगों को तकलीफ देने का नहीं था, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। जाओ यहाँ से, चले जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तुम नहीं जानते हो मुझे ये जानकर कितना दुख हो रहा है। उस मासूम बच्चे की शादी मैंने आकाश के साथ करवा दी है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। पर बहुत सोचने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि इस शादी से ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं अपनी इस गलती का पछतावा कैसे करूंगी, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरुणिमा की बात सुनकर अनंत की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, क्या आपने भूमि की शादी भाई के साथ करवा दी है? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया है माँ? आप एक बार मुझसे बात तो करती, मैं आपको समझाता कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी है। अरुणिमा ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या बात करती तुमसे? तुम कहाँ चले गए थे? किसी को पता था क्या? तुम किसी को बात करके गए थे? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मुझे पता कर जाते, लेकिन तुम तो सब कुछ एक साथ बर्बाद करके चले गए। अरुणिमा की गुस्से में सांस चढ़ने लगी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और अपनी माँ को ऐसा देख अनंत को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि अरुणिमा अपने आपे से बाहर जाती, आस्तिक वहां आ जाता है और अरुणिमा को संभाल लेता है। अनंत हैरानी से आस्तिक और अरुणिमा को देखने लगता है। वो जल्दी से कहता है, माँ मैं, आपने यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया है। अरुणिमा तेजी से सांस लेते हुए अनंत को घूर कर देख रही थी, लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा को संभालते हुए कहा, अनंत ने जो कुछ भी किया है, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें अपनी परवरिश पर शर्म नहीं बल्कि गर्व होगा। अरुणिमा हैरान नजरों से आस्तिक को देखने लगती है, तो आस्तिक अरुणिमा को संभालता हुआ सोफे के पास लेकर आता है और अनंत को भी अपने साथ आने का इशारा करता है। आस्तिक अरुणिमा को सोफे पर बिठाता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है, कभी कभी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वो सच होकर भी सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो हमारी कल्पना से बहुत अलग होता है। जहां एक तरफ तुम अनंत को ये सोचकर गलत ठहरा रही हो कि उसने भूमि की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो वहीं पर सच्चाई कुछ और है। अरुणिमा हैरान रह जाती है आस्तिक की बात सुनकर और वो आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, अनंत की एक दोस्त है त्रिशा, अनंत उसकी मदद करने के लिए ही गया था, क्योंकि त्रिशा के पति ने उसे उसके घर में कैद करके रखा हुआ था। उसने त्रिशा के बच्चे को गायब करवा दिया था। दरअसल वो त्रिशा से उसकी प्रॉपर्टी चाहता था, इसीलिए उसने त्रिशा के बेटे को जरिया बनाकर उसे किडनैप कर लिया और त्रिशा से उसकी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा था। इसीलिए त्रिशा ने अनंत से मदद मांगी थी। अगर अनंत वहां पर सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो आदमी त्रिशा के बेटे को मार चुका होता। अनंत सही वक्त पर वहां पहुंच गया और उसने लोकल पुलिस की मदद से त्रिशा के बेटे को बचाया। और सिर्फ त्रिशा के बच्चे को ही नहीं, उसने त्रिशा को भी उस आदमी की कैद से बाहर निकाला है। आस्तिक के ये कहने के बाद अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखने के बाद अनंत को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अरुणिमा जल्दी से अनंत को देखते हुए कहती है, अनंत ये क्या कह रहे हैं, ये सच है? अनंत जल्दी से हां में सर हिलाता है और कहता है, हां मां ये सच है।